बंधन एवं मोक्ष। बंधन प्रायः सभी भारतीय दर्शनों की भांति जैन दर्शन में भी जीव का कारण शरीर धारण करने को ही उसका बंधन माना गया है। तथापि इन दर्शनों में सिद्धांतगत आत्मस्वरूप की व्याख्या में मतभेद के फल स्वरूप बंध की विवेचना में भी भेद हो गया है। जैन दर्शन में जीव को एक चेतन द्रव्य माना गया है जो स्वभाव से पूर्ण एवं अनंत है। अपने पूर्व जन्मार्जित कर्मों के फलस्वरूप जीव अनेक योनियों से संबद्ध होकर अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। जीव के इस कर्म बंधन को ही जैन दार्शनिक बंध कहता है। द्वयोरपि जीव कर्मणोः संबंधः संयोग संबंधो नाम। जैन धर्म का कहना है कि बंधन का दुख जीव को भोगना होता है। स्वभाव से पूर्ण अनंत एवं चैतन्य जीव जब शरीर धारण कर लेता है तो उसके सामने अनेक बंध आ जाते हैं। जब ये बंधन जनित बाधाएं दूर हो जाती हैं तो वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य और अनंत आनंद प्राप्त कर लेता है। जैसे कुहासा और बादलों के हट जाने पर सूर्य अपने गुण को प्रसारित कर आलोक फैला देता है, उसी प्रकार जीव जब बाधाओं को मिटा देता है तो अपने अंदर निहित गुणों को प्रकट करने लगता है। बंधन का मुख्य कारण कर्म है। बंधन जीव के स्वाभाविक गुणों को ढक लेता है, उस पर पर्दा डाल देता है। जीव अपने कर्मों के आधार पर शरीर पाता है। पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण जीव में वासनाएं पैदा होती हैं। ये वासनाएं तृप्त होना चाहती हैं और पुद्गल को अपने ओर खींचती हैं। इससे विशेष प्रकार का शरीर बनता है। जीव सदा ही अपने कर्मों के अनुसार शरीर पाता है। जीव शरीर का निमित्त कारण है और पुद्गल उसका उपादान कारण। शरीर की सभी विशेषताएं कर्म के आधार पर होती हैं। कर्म के आधार पर जीव को शरीर, वंश, रूप, रंग, आकार, आयु, ज्ञान इंद्रिय तथा कर्मेंद्रियों की संख्या प्राप्त होती है। जैन आचार्यों का मत है कि कर्म कई प्रकार के होते हैं, आयु कर्म, गोत्र कर्म, ज्ञान को नष्ट करने वाला कर्म आदि। बंध में डालने वाली कुप्रवृत्तियां क्रोध, मान, माया, लोभ आदि हैं। इनको जैन दर्शन में कषाय कहा गया है, क्योंकि ये पुद्गल कणों को अपनी ओर आकृष्ट करती हैं। जीव के कर्म और वासना के आधार पर पुद्गल कण उसकी ओर आकृष्ट होते हैं। ये पुद्गल कण कर्म पुद्गल कहलाते हैं। जीव की ओर जिस कर्म पुद्गल का प्रवाह होता है उसे बंधन या आश्रव कहते हैं। अतः कषायों के कारण कर्म के अनुसार जीव का पुद्गल से बंध जाना ही बंधन का मुख्य कारण है और पुद्गल का बंधन मनोभाव का परिणाम है। अतः जीव का पतन अथवा बंधन मानसिक प्रवृत्तियों के कारण है। बंधन के दो भेद हैं, एक मन में दूषित भावों का अस्तित्व भाव बंध है, दो जीव का पुद्गल से बंध जाना द्रव्य बंध है। बंधन की दशा में जीव तथा पुद्गल एक दूसरे में प्रविष्ट हो जाते हैं। सजीव शरीर के हर भाग में पुद्गल तथा चैतन्य वर्तमान रहता है। इन दोनों का मिश्रण उसी प्रकार होता है जैसे दूध में पानी मिलकर एक हो जाता है। मोक्ष, जीव और पुद्गल का जब संयोग होता है तो वह जीव के लिए बंधन कहलाता है और जब जीव का पुद्गल से वियोग होता है तो वह जीव के लिए मोक्ष कहलाता है। जैन धर्मानुसार पुद्गल जीव से अलग तभी हो सकता है जब नए पुद्गल का बंधन बंद हो जाए तथा जो पुद्गल पहले से ही जीव में प्रविष्ट है वे जीर्ण हो जाएं। पहले को संवर तथा दूसरे को निर्जरा कहते हैं। जीव में पुद्गल का प्रवेश जीव के अंतर्निहित कषायों, दुर्वृत्तियों के कारण होता है। इन कषायों का कारण अज्ञानता है। चूंकि मनुष्यों को आत्माओं और द्रव्यों का ज्ञान नहीं रहता, इसलिए उनके मन में क्रोध, मान, माया, लोभ पैदा होता है। यह अज्ञान मोक्ष से दूर किया जा सकता है। यही इस दर्शन के अनुसार सच्चा सुख है। इसी को जीवन का अंतिम लक्ष्य बताया गया है, मोक्ष प्राप्ति के साधन। यहाँ इसको बताया गया है। हिंदू धर्म ग्रंथों में भी इसी मान्यता की प्रधानता है। जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति के लिए माध्यम शुद्ध दर्शन, ज्ञान और चरित्र को बताया गया है। तत्वार्थ शास्त्र का प्रथम सूत्र है सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चरित्र ही मोक्ष का मार्ग है। इन्हीं तीन को जैन धर्म में रत्नत्रय माना गया है और धर्म का स्वरूप इसी रत्नत्रय के भीतर गर्भित है। धर्म के ये तीन अंग अंततः वैदिक परंपरा में भी श्रद्धा या भक्ति, ज्ञान और कर्म के नाम से स्वीकार किए गए हैं। मनुस्मृति में उसी धर्म को प्रतिपादित करने की प्रतिज्ञा की गई है जिसका पालन एवं प्रचार सच्चे सम्यक दृष्टि विद्वान ज्ञानी राग द्वेष रहित सच्चरित्रवान महापुरुषों ने किया है। गीता में भी कहा गया है कि श्रद्धावान ही ज्ञान प्राप्त करता है और उसके बाद ही वह संयमी बनता है। यथा विद्वद्भिः सेवितः सद्भिः नित्यं द्वेषरागिभिः हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तन्निबोधत श्रद्धावान लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः। मोक्ष के तीन साधन निम्न हैं: एक, सम्यक दर्शन। जैन धर्म में मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त होने के लिए जो पहला चरण बताया गया है वह है सम्यक दर्शन, जिसका अर्थ है ऐसी दृष्टि की प्राप्ति जिसके द्वारा शास्त्रोक्त तत्वों के स्वरूप में सच्ची श्रद्धा उत्पन्न हो। इस सच्ची धार्मिक दृष्टि का मूल है अपनी आत्मा को शरीर से पृथक सत्ता मानना। जब तक ऐसा नहीं माना जाता तब तक जीव एक मिथ्या तत्व है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन धर्म में सम्यक दर्शन का अर्थ है यथार्थ ज्ञान के प्रति श्रद्धा रखना। यह श्रद्धा तीर्थंकरों और सिद्धों की शिक्षा के प्रति होनी चाहिए। अतएव मोक्ष मार्ग के साधक के लिए सर्वप्रथम सम्यक दर्शन की आवश्यकता जैन धर्म में बताई गई है। दो, सम्यक ज्ञान। इससे जीव और अजीव से संबंधित सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। सम्यक दर्शन के द्वारा जिन जीवादि तत्वों के प्रति व्यक्ति श्रद्धा रखता है उनकी विधिवत और यथार्थ जानकारी प्राप्त करना ही ज्ञान है। दर्शन और ज्ञान में सूक्ष्म भेद यह है कि दर्शन धर्म का आंतरिक पक्ष है और ज्ञान का बाहरी। दर्शन से आत्मा के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान के द्वारा बाहरी पदार्थों का बोध होता है। दोनों में परस्पर संबंध है, पर यह कार्य कारण का संबंध है। सम्यक ज्ञान में किसी प्रकार की संदिग्धता या दोष नहीं होता। मोक्ष के लिए कर्मों का नाश होना आवश्यक है। कर्मों के पूर्ण रूपेण विनष्ट हो जाने के बाद ही कैवल्य ज्ञान प्राप्त होता है। वह जैन धर्म में पांच प्रकार का बताया गया है: मति, श्रुति, अवधि, मनः, पर्यय और केवल ज्ञान। ज्ञेय पदार्थ और इंद्रिय विशेष का सानिध्य होने पर मन की सहायता से जो वस्तुबोध उत्पन्न होता है वह मति ज्ञान है। मति ज्ञान के आश्रय से युक्ति, तर्क, अनुमान व शब्दार्थ द्वारा जो परोक्ष पदार्थों की जानकारी होती है वह श्रुत ज्ञान है। आत्मा में एक ऐसी शक्ति का समावेश हो जाना जिसके कारण इंद्रियों के अगोचर, अतिसूक्ष्म, तिरोहित व इंद्रिय सन्निकर्ष के परे दूरस्थ पदार्थों का भी ज्ञान हो जाए अवधि ज्ञान है। वह ज्ञान जिसके द्वारा दूसरे के मन में चिंतित पदार्थों का बोध हो जाए वह मन पर्याय ज्ञान कहलाता है। केवल ज्ञान के द्वारा विश्व मात्र के समस्त रूपी अरूपी द्रव्यों और उनके त्रिकालवर्ती पर्यायों का ज्ञान युगपत होता है। तीन, सम्यक चरित्र। जैन धर्म में सम्यक दर्शन एवं सम्यक ज्ञान को चरित्रार्थ करने के लिए सम्यक चरित्र की आवश्यकता पर बल दिया गया है। यहाँ अहितकारी कर्मों का वर्जन तथा हितकारी का आचरण करना ही यहाँ सम्यक चरित्र कहा गया है। जैन साधकों का ऐसा विश्वास है कि सम्यक चरित्र का आचरण करने से जीव को अपने कर्मों से मुक्ति मिल जाती है। चूंकि कर्मों के कारण ही बंधन होता है अतएव नए कर्मों को रोकना और पुराने कर्मों को नष्ट करना ही मोक्ष का मार्ग है। सम्यक चरित्र के लिए साधकों को निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए: एक, पंच महाव्रत का पालन करना। दो, चलने फिरने, बोलने, मलमूत्र त्याग में सतर्कता बरतना। तीन, मन, वचन और कर्म में संयम बरतना। चार, 10 प्रकार के कर्मों का आचरण करना। पांच, जीव तथा संसार के यथार्थ तत्व के संबंध में भावना रखना। छह, समता, निर्मलता, निर्लोभता और सच्चरित्र प्राप्त करना। कुछ जैन दार्शनिक इनका पालन न करके केवल महाव्रतों का ही पालन सम्यक चरित्र के लिए पर्याप्त मानते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन का मत है कि सो मोक्षा इज सेट टू बी इंटरनल अपवर्ड मूवमेंट, अतएव मोक्ष चीर शाश्वत ऊर्ध्वगामिनी गति है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैन दर्शन में सूक्ष्म पुद्गल रूप कर्म से सर्वथा मुक्ति का नाम ही मोक्ष है। स्यादवाद। स्यादवाद जैन दर्शन का एक प्रमुख पक्ष है। इसमें कहने वाले की शैली के उपयोग की एक ऐसी प्रणाली है जिससे कथन का एक गुणात्मक अभिप्राय प्रकट होता है, साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि वह गुण मात्र ही उसमें नहीं है पर वह अन्य गुणों के सापेक्ष है। वक्ता अंतिम व्यक्ति नहीं है जो सभी गुणों को जानता हो, इसलिए किसी भी विषय में वह इदम इत्थम नहीं कह सकता। अतः वह अपनी बात को कहते हुए भी संभावना श्यात का सहारा लेता है। इसके द्वारा वह असत्यता की स्थिति में बच जाता है। वक्ता के अभिप्राय में एक ही वस्तु को कई रूपों में प्रकट किया जा सकता है, उसे है भी और नहीं भी कहा जा सकता है। दोनों अभिप्रायों के मेल से हाँ ना या एक मिश्रित वचन का ज्ञान भी हो सकता है। इसी कारण उस गुण को अवक्तव्य भी कह सकते हैं। इसी प्रकार के कथनों के लिए कथन के पूर्व स्यात् शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसका अर्थ है शायद। व्याकरण की दृष्टि में स्यात् अस धातु का विधिलिंग अन्य पुरुष एक वचन का रूप है। इसका अर्थ होता है ऐसा हो। एक संभावना यह भी है। जैन न्याय में इस पद को सापेक्ष वाचक बनाकर अपनी अनेकांतक विचार शैली को प्रकट करने का साधन बनाया गया है। जैन दर्शन में एक अवधारणा है कि मात्र केवली ही केवल ज्ञान से वस्तुओं के अनंत धर्मों का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त कर सकता है, किंतु साधारण मनुष्य एक वस्तु को एक ही दृष्टि से देख सकता है। एक समय में किसी भी वस्तु को केवल एक ही धर्म मालूम कर सकता है। यह विषय संबंधी वक्ता का आंशिक ज्ञान होता है। इस आंशिक ज्ञान को जैन दार्शनिक नय कहते हैं। इसे दर्शन में भी नय कहा गया है। नयति प्रापयति संवेदनम आरोहयतीति नयः प्रमाण प्रवृत्ते रुत्तर विषय काल भावी परामर्शः। किसी भी विषय पर हम अपना जो भी परामर्श देते हैं वह हर दृष्टि से सही नहीं होता है। उसकी सत्यता उसके नए आंशिक ज्ञान पर ही आधारित होती है। जिस दृष्टि एवं विचार से हम किसी विषय पर परामर्श देंगे उसकी सत्यता उसी विचार और दृष्टि से होगी। आखिर विचारों में मतभेद का कारण क्या है? जैन दर्शन के दृष्टिकोण से इस पर विचार करने को सत्य मानने लगते हैं। न्याय को भूलकर विचार करने से इस प्रकार का वैचारिक भेद उत्पन्न हो जाता है। यह एक उदाहरण से स्पष्ट होता है। जैसे कुछ अंधे लोग किसी हाथी का स्पर्श कर रहे हैं, कोई उसकी पूंछ, कोई कान और कोई सूंड या पैर पकड़ रहा है। अब इन अंधों से हाथी के आकार के संबंध में पूछा जाए तो उनके वर्णन में सर्वथा मतभेद ही मिलेगा। यदि उन्हें बता दिया जाए कि सभी अंधों ने हाथी के एक ही अंग का स्पर्श किया है तो इनका सारा मतभेद दूर हो जाएगा। इसी मतभेद को दूर करने के लिए जैन दार्शनिक स्यात् शब्द का प्रयोग करते हैं। ये प्रत्येक नए आंशिक ज्ञान के आरंभ में स्यात् शब्द जोड़ते हैं। इसमें प्रयुक्त स्यात् शब्द से संकेत मिलता है कि इसके साथ प्रयुक्त वाक्य की सत्यता प्रसंग विशेष पर ही निर्भर रहती है, अतएव अन्य प्रसंगों में यह मिथ्या भी हो सकती है। ऊपर के उदाहरण में एक अंधे का आधार पर यह कह देना कि हाथी खंभे के समान है अथवा सूप के समान है उचित नहीं होगा, बल्कि यह कहना ठीक होगा कि स्यात् हाथी का आकार खंभे के समान है। इससे वह बोध हो जाता है कि वह एक दृष्टि से खंभे के समान है, अतः अपने एकांतिक विचार को दोष विचार को दोष से बचाने के लिए स्यात का प्रयोग जैन दार्शनिक करते हैं। इस दोष के परिहारार्थ स्यात का प्रयोग जैन साधकों को भी करने की अनुमति है। घर के भीतर किसी काले रंग के घड़े को देखकर हमें यह नहीं कहना चाहिए कि घड़ा है, बल्कि यह कहना चाहिए कि स्यात घड़ा है। स्यात से इस बात का ज्ञान होता है कि घड़ा का अस्तित्व काल विशेष है, स्थान विशेष तथा गुण विशेष के अनुसार है। स्यात शब्द के प्रयोग से यह भ्रम नहीं होता कि घड़ा नित्य है तथा सर्वव्यापी है। केवल घड़ा कहने से अनेक प्रकार की भ्रांतियां उत्पन्न हो सकती हैं, किंतु स्यात घड़ा कहने से नहीं। जैन धर्म के अनुसार भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से देखे जाने के कारण प्रत्येक ज्ञान भी भिन्न भिन्न हो सकता है। स्यादवाद का विश्लेषण करते हुए डॉक्टर जैन ने कहा है, स्यादवाद कोई अद्वितीय वस्तु नहीं है, क्योंकि व्यवहार में हम बिना स्याद शब्द का प्रयोग किए भी कुछ दूर सापेक्ष भाव का ध्यान रखते ही हैं। तथापि शास्त्रार्थ में कभी कभी किसी बात की सापेक्षता की ओर ध्यान न दिए जाने से बड़े बड़े विरोध और मतभेद उपस्थित हो जाते हैं, जिनमें सामंजस्य बैठाना कठिन प्रतीत होने लगता है। संभवतः इस स्यादवाद प्रणाली द्वारा ऐसे विरोधों एवं मतभेदों को पनपने न देने का प्रयत्न किया गया है। जहाँ परंपरा विरोध दिखाई दे, वहीं स्याद पद से उसे सुलझाने और सामंजस्य बैठाने की कुंजी भी दी गई है। सप्तभंगी नय, किसी वस्तु या विषय को आंशिक ज्ञान को जैन दर्शन में नय कहा जाता है। वक्ता के अभिप्राय में वह सामग्री एक वस्तु है और नहीं भी है, कहा जा सकता है। दोनों अभिप्रायों के मेल से हाँ और ना एक मिश्रित वचन बनता है, इसी कारण उसे अव्यक्त भी कह सकते हैं। वह यह भी कह सकता है कि प्रस्तुत वस्तु का स्वरूप है भी और फिर भी अवक्तव्य है, नहीं है और फिर भी वक्तव्य है, अथवा है भी और नहीं भी है और फिर भी अवक्तव्य है। इन्हीं सात संभावनात्मक विचारों के अनुसार सात प्रमाण भंगियां मानी गई हैं। एक, स्याद अस्ति, स्याद नास्ति, स्याद अस्ति नास्ति, स्याद अवक्तव्यम, स्याद अस्ति वक्तव्यम, स्याद नास्ति अवक्तव्यम, स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्यम। सप्तभंगी नय को निम्न उदाहरणों से स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे किसी ने पूछा कि क्या आप ज्ञानी हैं, इसके उत्तर में इस भाव से कि मैं कुछ न कुछ तो अवश्य ही जानता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि मैं स्याद ज्ञानी हूँ। संभव है मुझे अपने ज्ञान की अपेक्षा अज्ञान का भान अधिक हो और उस अपेक्षा से मैं कहूँ कि स्याद मैं अज्ञानी हूँ। कितनी बातों का ज्ञान है और कितनी बातों का ज्ञान नहीं है। अतएव यदि मैं कहूँ कि मैं स्याद ज्ञानी हूँ भी और नहीं भी, तो भी अनुचित न होगा। और यदि इसी दुविधा के कारण इतना ही कहूँ कि मैं कह नहीं सकता कि मैं ज्ञानी हूँ या नहीं, तो भी मेरा वचन असत्य न होगा। इन्हीं आधारों पर मैं सत्यता के साथ यह भी कह सकता हूँ कि मुझे कुछ ज्ञान तो है, फिर भी यह नहीं कह सकता कि आप जो बात मुझसे जानना चाहते हैं उस पर मैं प्रकाश डाल सकता हूँ अथवा नहीं। इसी बात को दूसरे प्रकार से यूं भी कह सकते हैं कि मैं कुछ ज्ञानी हूँ भी और कुछ नहीं भी हूँ। अतएव कहा नहीं जा सकता कि प्रकृति के विषय का मुझे ज्ञान है या नहीं। ये समस्त वचन प्रणालियाँ अपनी अपनी सार्थकता रखती हैं, तथापि पृथक पृथक रूप में वस्तु स्थिति के एक अंश को भी पूर्वोक्त प्रकट करती हैं, इसके पूर्ण स्वरूप को नहीं। इसलिए जैन न्याय इस बात पर जोर देता है कि पूर्वोक्त में से अपने अभिप्रायानुसार वक्ता चाहे जिस वचन प्रणाली का उपयोग करे, किंतु उसके साथ स्यात पद अवश्य जोड़ दे, जिससे यह स्पष्ट प्रकट होता रहे कि वस्तु स्थिति में अन्य संभावनाएं भी साथ हैं। जैन आचार मीमांसा। जैन भिक्षुओं के आचरण करने के लिए तीर्थंकरों द्वारा नियम प्रतिपादित किए गए हैं। ये जैन धर्म में स्वीकृत किए गए हैं। इन नियमों को जैन आचार मीमांसा के सिद्धांत नाम से जैन धर्म में जाना जाता है। इन सिद्धांतों के द्वारा आचरण करने पर जैन साधक बंधन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ये निम्न हैं: एक, कषायों का उन्मूलन। जैन आचार मीमांसा के अनुसार सर्वप्रथम जैन साधक को चार तत्वों से दूर रहना चाहिए: क्रोध, मान, माया और लोभ। ये जैन धर्म में कषायों दुष्प्रवृत्तियों के नाम से जाने जाते हैं। इन कषायों को जैन धर्म में बुराई की ओर ले जाने वाला कहा गया है। ये सुख में दुख बनकर तथा तपस्या में रोग बनकर आने वाले पाप हैं। जिस प्रकार काले कपड़े पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता, उसी प्रकार जिसकी आत्मा दुष्प्रवृत्तियों से कलुषित होती है, उसके अंतःकरण में धर्म की बात नहीं उतरती है। जिस प्रकार दवानल में वन के सभी वृक्ष जलकर खाक हो जाते हैं, वैसे ही कषायों के वश में जीव जन्मांतर के कर्मों को नष्ट कर देता है। अतः धर्म की रक्षा के लिए कषायों का उन्मूलन आवश्यक है। इसके लिए संयम की आवश्यकता बतलाई गई है। संयम सदाचार के द्वारा प्राप्त होता है। शरीर तथा आत्मा की शुद्धि के लिए राग, द्वेष, मोह, क्रोध, मान, लोभ, धर्म में संयम सदाचार अथवा सम्यक चरित्र कहे गए हैं। दो, पंच महाव्रत। आचार या सम्यक चरित्र के लिए यहाँ पंच महाव्रत को की व्यवस्था की गई है। ये पंच महाव्रत निम्न हैं: एक, अहिंसा महाव्रत। जाने या अनजाने में किसी भी प्रकार से हिंसा न करने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए निम्न निर्देशों का पालन पर बल दिया गया है: एक, ईर्ष्या समिति। दो, भाषा समिति। तीन, ऐषणा समिति। चार, आदान क्षेपक्षा समिति। पाँच, व्युत्सर्ग समिति। दो, असत्य त्याग महाव्रत। इसके अनुसार भाषण सादा और मधुर होना चाहिए। इनमें निम्नलिखित पांच बातों पर ध्यान देना चाहिए: एक, अनुबिम भाषी, बिना सोचे समझे नहीं बोलना चाहिए। दो, कोहम परिजानाति। तीन, लोभम परिजानाति। चार, भयम परिजानाति। पांच, हासम परिजानाति। तीन, अस्तेय महाव्रत। जैन धर्म के अनुसार अनुमति के बिना किसी की वस्तु ग्रहण करना ही अस्तेय कहा गया है। अतएव इस धर्म में अनुमति के बिना किसी अन्य की वस्तु को न ग्रहण करने की इच्छा करने की बात कही गई है। इसके लिए भी पांच बातें ध्यान में रखने योग्य बताई गई हैं: एक, बिना आज्ञा किसी के घर के भीतर नहीं जाना चाहिए। दो, गुरु की आज्ञा बिना भिक्षा से अर्जित भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। तीन, बिना अनुमति के किसी के घर में निवास नहीं करना चाहिए। चार, किसी के घर में रहते समय बिना गृह स्वामी की आज्ञा के उसके किसी भी वस्तु का उपयोग नहीं करना चाहिए। पाँच, यदि कोई भिक्षु किसी के घर में निवास कर रहा है तो उसे भी गृह स्वामी की आज्ञा बिना उसके घर में नहीं रहना चाहिए। चार, ब्रह्मचर्य। पंच महाव्रत का चौथा महाव्रत है। इसकी महत्ता सभी धर्मों में स्वीकार की गई है, किंतु जैनियों से इसे कठोरता से पालन करने के लिए कहा गया है। जैन साधक को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करने का आदेश दिया गया है। पांच, अपरिग्रह। अंतिम महाव्रत अपरिग्रह महाव्रत है। विषयों के प्रति आसक्ति न रखने को ही यहाँ अपरिग्रह कहा गया है। अतएव जैन भिक्षुओं को किसी भी प्रकार का संग्रह नहीं करने का आदेश है, क्योंकि इससे आसक्ति उत्पन्न होती है। धन धान्य वस्त्राभरण सभी परित्याज्य हैं। इनके अतिरिक्त इंद्रियों के विभिन्न रूप या विषयों में भी सर्वथा अनाशक्ति भाव का होना आवश्यक बताया गया है। ये पंच महाव्रत भिक्षुओं के लिए प्रतिपादित किए गए हैं। तीन, पंच अणुव्रत। किंतु गृहस्थों के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं, जिन्हें अणुव्रत की संज्ञा दी गई है। ये नियम पंच महाव्रत के ही नियम के हैं, किंतु इनमें इतनी कठोरता नहीं जितनी भिक्षुओं के लिए महाव्रतों में है। ये अणुव्रत निम्न है: एक, अहिंसा अणुव्रत; दो, सत्याणुव्रत; तीन, अस्तेयाणुव्रत; चार, ब्रह्मचर्याणुव्रत; पांच, अपरिग्रहाणुव्रत। इनके आधारभूत सिद्धांत पूर्वोल्लिखित महाव्रतों के समान है, किंतु उनकी कठोरता एवं अतिवादिता इनमें नहीं है। चार, अनुप्रेक्षाएं। इन सब के अतिरिक्त जीव के मुक्ति के लिए निम्न 12 अनुप्रेक्षाओं के से अर्थात भावनाओं से मुक्त रहना आवश्यक है। ये हैं: एक, असत्य भावना, संसार में कुछ भी अमर नहीं है, सब कुछ क्षणभंगुर है। दो, अशरण भावना, इस संसार में जीवन का कोई सहारा नहीं है, जो जैसा कर्म करता है वह वैसा फल पाता है। तीन, सांस्कृतिक भावना, पिछले जन्मों में हमने अनेक प्रकार के दुखों को भोगा है, अब इस जन्म में अच्छे कर्म करके छुटकारा पाना है। चार, एकत्व भावना, संसार में अकेला हूँ, संबंध के सारे बंधन व्यर्थ हैं। पांच, अन्यत्व भावना, संसार की सभी वस्तुएं मुझसे भिन्न हैं, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। सात, अशुचि भावना, इस अपवित्र शरीर पर अभिमान करना व्यर्थ है। सात, आश्रव भावना, जिन बातों से सत्कर्म हो उन्हें सोचते रहना। आठ, संवर भावना, नवीन कर्मों से आत्मा बंध न जाए ऐसे उपायों को सोचते रहना। निर्जरा भावना, कर्मों के बंधन को छिड़ करने के लिए उपायों को सोचते रहना। दस, लोक भावना, संसार किन किन द्रव्यों से बना है तथा इसके तत्व क्या हैं, इसके विषय में चिंतन करते रहना चाहिए। 11, बोधि दुर्लभ भावना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये त्रिरत्न दुर्लभ हैं, इनके अतिरिक्त संसार की सभी वस्तुएं सुलभ हैं। 12, धर्म की भावना, ये रत्न ही संसार के सभी प्रकार के सुखों को देने वाले धर्म हैं, ऐसा विचार करते रहना चाहिए। 5, कर्मों का परित्याग, जीवों को अपने कर्मों का फल स्वयं भोगना पड़ता है, अतः इनसे छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को अच्छे कर्म करने चाहिए, ये ही आचार संहिता के सिद्धांत हैं। जैन ज्ञान मीमांसा, सम्यक दर्शन के द्वारा जिन जीवादि तत्वों में श्रद्धा हो जाती है उनकी विधिवत यथार्थ जानकारी प्राप्त करना ही जैन धर्म में ज्ञान कहलाता है। दर्शन एवं ज्ञान में सूक्ष्म भेद की रख यह है कि दर्शन का क्षेत्र अंतरंग है और ज्ञान बाह्य पदार्थ का बोध उत्पन्न कराता है। जैन धर्म में जीव या आत्मा का स्वरूप चैतन्य माना गया है। जीव या आत्मा सूर्य के समान है, जैसे सूर्य अन्य चीजों को प्रकाशित करता है तथा साथ ही साथ अपने को भी प्रकाशित करता है, उसी प्रकार जीव या आत्मा अपने को प्रकाशित करने के साथ साथ अन्य वस्तुओं को भी प्रकाशित करता है। बादल या कोहरा से ढक जाने के कारण जैसे सूर्य प्रकाश नहीं दे पाता, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी बंधन में पड़ जाने के कारण प्रकाश नहीं दे पाती। बंधन के दूर हो जाने पर आत्मा या जीव ज्ञान में हो जाता है। जीव या आत्मा में ज्ञान की अनंत शक्ति है। जैन धर्म में ज्ञान प्राप्त ज्ञान भेदों का विश्लेषण करने पर हमें ज्ञान के मुख्यतः दो भेद प्रत्यक्ष एवं परोक्ष ज्ञात होते हैं। प्रसिद्ध जैन दार्शनिक उमा स्वाति का कहना है कि वह यथार्थ ज्ञान जिसे जीव बिना किसी की सहायता के स्वयं प्राप्त करता है प्रत्यक्ष ज्ञान है। इससे स्पष्ट है कि प्रत्यक्ष प्रमाण स्वतः प्रमाण है, अर्थात प्रत्यक्ष प्रमाण में ज्ञान बिना किसी अन्य की सहायता से स्वतः प्रामाण्य है। इसमें जीव स्वतंत्र रूप में साक्षात ज्ञान को प्राप्त करता है। जैन धर्म में प्रत्यक्ष ज्ञान को भी पुनः दो भेदों पारमार्थिक तथा व्यवहारिक में विभक्त किया गया है, जो कर्म के प्रभाव से मुक्त हो तथा स्वतंत्र रूप से अपने को प्रकाशित करे वह पारमार्थिक प्रत्यक्ष है। इसके द्वारा जगत के सभी विषय सर्वदा भासित होते हैं वास्तविक प्रत्यक्ष की भी यही है। किंतु जिस ज्ञान के लिए जीव को इंद्रियों की चेष्टाओं तथा मन पर निर्भर रहना पड़ता है, उसे जैन दर्शन में व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा गया है। व्यवहारिक प्रत्यक्ष भी दो प्रकार का है, एक जिसमें इंद्रियां स्वतंत्र रूप से असाधारण कारण हो, तथा दो जिसमें मन स्वतंत्र रूप से कारण हो। जैन मन को इंद्रिय नहीं मानते हैं। बाद में जैन दार्शनिकों ने व्यवहारिक दृष्टि से मति और शुद्ध को भी प्रत्यक्ष प्रमाण के अंतर्गत माना, और इंद्रियों तथा मन के द्वारा जो ज्ञान जीव को प्राप्त होता है उसे भी प्रत्यक्ष मान ज्ञान माना। इनसे भिन्न ज्ञान को परोक्ष ज्ञान माना गया है। और व्यवहारिक प्रत्यक्ष ज्ञान, एक मति ज्ञान, ज्ञेय पदार्थ और इंद्रिय पदार्थ का सन्निकर्ष होने पर मन की सहायता से जो वस्तु बोध होता है वह मति ज्ञान कहलाता है। मति ज्ञान निम्न प्रकार के होते हैं, एक अवग्रह, पदार्थ और वस्तु का सन्निकर्ष होने पर मन की चेतन अवस्था में जो कुछ है ऐसा बोध होता है वह अवग्रह कहलाता है, अर्थात इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न प्रथम अवस्था के ज्ञान को सम्मुक्त आलोचन, ग्रहण, अवधारण आदि भी कहते हैं। दो, यह मति ज्ञान के द्वारा उत्पन्न अस्पष्ट वस्तु बोध के संबंध में विशेष जानने की इच्छा यह कहलाती है। यह प्रत्यक्ष ज्ञान के क्रमिक विकास के द्वितीय क्षण में उत्पन्न होने वाला ज्ञान है। इस अवस्था में जीव को दृश्य विषय के गुणों के जानने की इच्छा होती है। तीन, अवाय, दृश्य वस्तु का निमित्त निश्चित रूप से प्राप्त ज्ञान अवाय कहलाता है। चार, धारण, प्रत्यक्ष ज्ञान की यह अंतिम अवस्था है। इसमें दृश्य वस्तु का पूर्ण ज्ञान होता है, जिसका संस्कार जीव के अंतःकरण पर पड़ जाता है। दो, श्रुत ज्ञान, आगमों के द्वारा तथा आलोचकों से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे श्रुति ज्ञान कहा जाता है। मति ज्ञान होने के पश्चात ही श्रुत ज्ञान होता है। मति ज्ञान होने के पश्चात ही श्रुत ज्ञान होता है। इसकी पुष्टि डॉक्टर हीरालाल जैन के इस कथन से भी होती है कि मति ज्ञान के आश्रय से युक्ति, तर्क, अनुमान व शब्दार्थ द्वारा जिन परोक्ष पदार्थों की जानकारी होती है वह श्रुत ज्ञान है। श्रुत ज्ञान के दो भेद हैं, अंग बाह्य अर्थात जिसका उल्लेख जैनागम में न हो, तथा अंग प्रविष्ट अर्थात जिसका उल्लेख अंगों में हो। मति और श्रुत में भेद, मति और श्रुत में निम्न भेद हैं। मति ज्ञान में प्रत्यक्ष में विषय की उपस्थिति आवश्यक है, किंतु श्रुत ज्ञान में भूत, वर्तमान में तथा भविष्य सभी काल में विषय रहते हैं। दो, जैनागम से संबद्ध होने के कारण श्रुत ज्ञान मति ज्ञान की अपेक्षा श्रेष्ठ माना जाता है। तीन, मति ज्ञान में परिणाम का प्रभाव रहता है, किंतु श्रुत ज्ञान तो आत्मवचन होने के कारण परिणाम से परे और विशुद्ध होता है। ब, परमार्थिक प्रत्यक्ष ज्ञान, आत्मा के स्वाभाविक गुणों को अवरुद्ध करने वाले घाती तथा अघाती कर्मों के प्रभाव के हट जाने के पश्चात जीव स्वयं बिना किसी इंद्रिय तथा मन के सहयोग के ज्ञान प्राप्त करता है, वही ज्ञान परमार्थिक प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। इसके दो भेद हैं, एक केवल ज्ञान, यह ज्ञान की वह अवस्था है जिसमें घाती तथा अघाती कर्मों का प्रभाव दूर हो जाता है, जीव सम्यक दर्शन का अनुभव करने लगता है तथा समस्त जगत के कार्यों को साक्षात देखता है, राग द्वेष तथा मोह से रहित अर्हतों का ज्ञान होता है। दो, विकल ज्ञान, इसमें सीमित तथा विषय के एक अंश का ही ज्ञान रहता है। इसके दो भेद हैं, एक अवधि ज्ञान, ज्ञान के आवरणों के हट जाने पर जो ज्ञान स्वभाव से ही देवताओं तथा नारकीय लोगों में हो एवं मनुष्य तथा निम्न स्तर के जीवों में प्रयत्न से हो तथा जो सम्यक दर्शन जन्य हो वही अवधि ज्ञान कहा जाता है। 2. मनः पर्याय ज्ञान, सम्यक चरित्र के ज्ञान द्वारा ज्ञान के आवरणों को दूर करने पर जो ज्ञान उत्पन्न हो तथा जो अन्य पुरुषों के मन में वर्तमान सीमित आकार की वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करे वही मनः पर्याय ज्ञान है। यह ज्ञान साधुओं को ही पर्याप्त होता है, अवधि ज्ञान तो सभी को हो सकता है। मनः पर्याय ज्ञान परिशुद्ध तथा सूक्ष्म है। 3. परोक्ष ज्ञान या परोक्ष प्रमाण, जैन धर्म में दूसरा प्रमाण है परोक्ष। हेतु के द्वारा साध्य वस्तु के ज्ञान को परोक्ष तथा उस ज्ञान की प्रक्रिया को अनुमान कहा जाता है। स्वार्थ तथा परार्थ के भेद से अनुमान दो प्रकार का माना गया है। उनके दृष्टांतों को देखकर अपने मन में अपने को समझने के लिए किए गए अनुमान को स्वार्थानुमान कहते हैं। जैसे अनेक स्थानों में धूम को अग्नि के साथ सदा देखने वाला मन में निश्चय करता है कि जहाँ जहाँ धूम है वहाँ आग है। यह नियत काल में हेतु और आग इन दोनों के एक साथ रहने की व्याप्ति करता है। बाद में कहीं जाते हुए एक पर्वत में धूम को देखकर यह निर्णय करना कि पर्वत में वहनी है स्वार्थानुमान है। इस प्रक्रिया में पर्वत पक्ष है तथा पर्वत में रहने वाला धूम पक्ष धर्म है। 5. परार्थानुमान, जब यही बात दूसरों को समझाने के लिए कही जाती है तो उसे परार्थानुमान कहा जाता है। इसमें जिन 5 वाक्यों के द्वारा निर्णय लिया जाता है उन वाक्यों के अनुमान को अवयव कहते हैं। जैसे प्रतिज्ञा, पर्वत में वहनी है। 2. हेतु, क्योंकि पर्वत में धूम है। 3. दृष्टांत, जहाँ धूम है वहाँ वहनी है। 4. उपनयन, जो धूम बिना वहनी के नहीं रहता वह पर्वत में है। निगमन, इसलिए पर्वत में वहनी है। 10. अवयव परार्थानुमान, भद्रबाहु ने 10 वैकालिक नियुक्ति में 10 अवयव वाले अनुमान का उल्लेख किया है जिसका स्वरूप निम्न है। प्रतिज्ञा, हिंसा निरोध सबसे बड़ा पुण्य है। 2. प्रतिज्ञा विभक्ति, हिंसा निरोध जैन तीर्थंकरों के मत में सबसे बड़ा पुण्य है। 3. हेतु, हिंसा निरोध सबसे बड़ा पुण्य है क्योंकि जो हिंसा का निरोध करता है वह देवताओं का प्रिय पात्र होता है और उनका आदर करना मनुष्यों के लिए धार्मिक कार्य है। हेतु विभक्ति, हिंसा के निरोध करने वालों के अतिरिक्त अन्य कोई भी पुण्य लोकों में रहने की आज्ञा नहीं पाते। 5. विपक्ष, परंतु जो जैन तीर्थंकरों से घृणा करते हैं और हिंसा करते हैं वे देवताओं के प्रिय हैं और उनका आदर करना मनुष्यों के लिए धार्मिक कार्य है। योगों में हिंसा करने वाले स्वर्ग में रहते हैं। 6. विपक्ष प्रतिषेध, हिंसा करने वालों की जैन तीर्थंकर निंदा करते हैं, वे उनके आदर पात्र नहीं हैं और न तो वे देवताओं के प्रिय ही हो सकते हैं। सात, दृष्टांत, अरहत एवं जैन साधु लोग स्वयं अपना भोजन नहीं बनाते कि कहीं उसमें हिंसा न हो जाए, तो वह लोग गृहस्थों के लिए यह कार्य छोड़ देते हैं तथा गृहस्थों के यही स्वयं भोजन करते हैं। 8. आशंका, दृष्टांत की सत्यता में संदेह होना आशंका है। गृहस्थ को भोजन बनाते हैं वह अरहत तथा जैन साधु लोगों के लिए भी बनाते हैं, फिर उसमें जीव हिंसा होने में से उन गृहस्थों को तथा अरहत एवं जैन साधुओं को भी उस पाप का भागी बनना पड़ेगा। 6. साधुओं इसलिए उपर्युक्त दृष्टांत ठीक नहीं है। 9 आशंका प्रतिरोध। अर्हत एवं जैन साधु भिक्षा के लिए अपने आने की सूचना गृहस्थों को नहीं देते और न तो वे कभी किसी नियत समय में उनके यहाँ भिक्षा के लिए जाते हैं, अतएव उनके लिए गृहस्थ भोजन बनाते हैं ऐसा कहना ठीक नहीं है। अतः उस पाप से अर्हत एवं साधुओं का कोई भी संबंध नहीं है। निगमन, हिंसा निरोध सबसे बड़ा पुण्य है। परोक्ष प्रमाण के अंतर्गत शब्द प्रमाण भी एक प्रमाण है। प्रत्येक के विरुद्ध न होकर भी जो ज्ञान शब्द के द्वारा उत्पन्न हो वह शब्द प्रमाण है। इसके भेद दो हैं, लौकिक तथा शास्त्रीय। इसी प्रमाणों के द्वारा जैन धर्म में अविद्या का नाश तथा ज्ञान एवं आनंद की प्राप्ति मानी गई है। स, जैन धर्म की समीक्षा। क, जैन धर्म के ह्रास के कारण। जैन धर्म जिस वेग से बढ़ा उसमें पीछे या गति न रही, धीरे धीरे अपनी जन्मभूमि भारत में सिमटता गया। इसके लिए निम्न कारण उत्तरदायी हैं। एक, पार्श्वनाथ के चतुर्यान के स्थान महावीर स्वामी के पंचव्रत सिद्धांत के कारण लोगों के मन में शंका उत्पन्न होने लगी कि क्या उनमें विभेद प्रारंभ हो गया है। उन्हें शंका होने लगी कि क्या पार्श्वनाथ का चार व्रत वाले में कौन सत्य है। महावीर का पांच व्रत वाले मत और महावीर के अनुयायी गौतम ने यह कहकर इसका समाधान किया कि महावीर का पांचवा व्रत पार्श्वनाथ के चौथे व्रत में अंतर्निहित था, पर इसका अंतर्भाव समझ में नहीं आया। इसी से यह निश्चित किया गया पर शंका नहीं बनी रही। दो, पार्श्व और महावीर के बीच जो समय का लंबा अंतराल आया उसमें भिक्षुओं की नैतिकता का ह्रास हुआ। तीन, ऊपर दोनों आचार्यों के उपदेश के संबंध में उठी शंकाओं के विषय में यह कहा गया कि धर्मपरायण व्यक्तियों के बाहरी लिंग या चिन्ह मोक्ष के साधक नहीं होते, केवल ज्ञान दर्शन और चरित्र से ही मोक्ष मिलता है। इससे लगता है कि महावीर के समय में ही जैन धर्म दो संप्रदायों में बंटने लगा था, एक पार्श्वनाथ का प्राचीनतम तथा दूसरे महावीर का नवीनतम मत। चार, इस संप्रदाय में भेद के कारण दोनों तीर्थंकरों के अनुयायियों में वस्त्र संबंधी भेद ने इसको पुष्ट करना शुरू किया। पार्श्वनाथ के अनुयायी श्वेत वस्त्र पहनने से श्वेतांबर कहलाते थे तथा महावीर के अनुयायी नंगे रहने से दिगंबर, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है नंगा कहलाते थे। यह सीधी विभेदक रेखा बन गई। फिर बिखराव स्वाभाविक था। पांच, मध्यम निकाय नामक बौद्ध ग्रंथ में वर्णन है कि निगंठ पुत्र सच्चक ने नाथ पुत्र को शास्त्रार्थ में हराया, अतः बुद्ध के समय दोनों संप्रदायों का विरोध आरंभ हो गया था। छह, जैन धर्म में अहिंसा और काया क्लेश का विशेष बल दिया जाता था। ये यहाँ तक मानने लगे कि जड़ प्रकृति की भी प्राण युक्त और जीवित है, अतः उसके प्रति भी अहिंसा के दृष्टिकोण ने इसे अव्यवहारिक बनाना शुरू किया। उसके प्रति इतनी उदात्त भावना रखना जनमानस के लिए संभव नहीं था। सात, काया क्लेश पर जैन जोर देते हैं पर तथा नंगे रहना और पायोपवेशन उपवास रखकर शरीर त्यागना अच्छा मानते हैं, जबकि उसी समय प्रचारित बौद्ध धर्म में मध्यम प्रतिपदा का प्रचार हो रहा था। अतः स्वाभाविक था कि जनमानस अतिवाद की अपेक्षा मध्यम मार्ग की ओर अधिक आकृष्ट हुआ। आठ, विरोध की आग महावीर के बाद धीरे धीरे सुलगती रही। उनके बाद यद्यपि बहुत दिनों तक कोई ऐतिहासिक घटना नहीं हुई पर विद्रोह की चिंगारी जलती रही। यह फुट उनके जीवन काल में शुरू हो गई थी। उनके भांजे और जमाता ने कुछ विरोध शुरू किया था। बाद में तीसगुत्र नामक भिक्षु ने इसमें सहयोग दिया। इससे उनके मरने के बाद विरोध प्रत्यक्ष होने लगा। जब चुंद ने आनंद को महावीर की मृत्यु का संदेश दिया तो आनंद ने कहा, मित्र चुंद, भगवान के सम्मुख चर्चा चलाने का यह अच्छा विषय है। 9. संघ के संचालन में कठिनाई आई क्योंकि महावीर के 11 मठघरों में सुधर्मा और गौतम को छोड़ सभी मर चुके थे। गौतम महावीर के निर्वाण के दिन ही केवली हुए थे। इसी से महावीर के बाद सुधर्मा प्रमुख बने। अब आगे 150 वर्षों तक जैन धर्म का इतिहास घटना से रहित रहा। उचित नायकत्व की कमी ने उसके विकास को रोक दिया। 10. राजकीय सहयोग भी इसे भरपूर न मिल सका। मगध का शासक उदयन यद्यपि इस धर्म का समर्थक था, पर उसके भिक्षु वेश धारण करने के कारण एक राजकुमार ने उसकी हत्या कर दी। फिर नंद राजा भी इसके प्रति आस्थावान था, पर वह कुछ कर नहीं सका क्योंकि अपनी समस्याओं में ही सदा उलझा रहा। कलिंग का क्षेत्रीय शासक खारवेल जैन धर्मानुयायी था। उसने इसे बहुत समर्थन दिया पर उसके साथ ही उस वंश का इतिहास लुप्त हो गया। 11. जैन संघ में नंद राजा के समय फूट पड़ गई। इसमें अब दो दो अध्यक्ष हो गए। ये थे संभूति विजय और भद्रबाहु। 12. जैन संघ के अस्थिर गति होने से इसकी गति को बड़ा धक्का लगा। मगध में 12 वर्षों का घोर अकाल पड़ा। इसके क्षति के संघ की रक्षा के लिए भद्रबाहु संघ को लेकर दक्षिण चला गया और श्रवण बेल गोला में संघ के साथ बस गया। अकाल की समाप्ति पर ये फिर वहां से लौटकर उत्तर भारत आए तो संघ का प्रमुख स्थूल भद्र को बनाकर स्वयं नेपाल चला गया। ये भिक्षु जो दक्षिण से पुनः लौटे थे उनकी पकड़ अब यहाँ संघ पर दृढ़ नहीं रही। इसी से इन्होंने मगध में रहने वाली स्थायी भिक्षुओं को विनय नियमों को तोड़ने वाला तथा कार्य के प्रति अविश्वास रखने वाला कहा। इसका कारण था कि जो दिगंबर पहले वस्त्र नहीं पहनते थे अब श्वेत वस्त्र पहनने लगे। 13. पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त के मरने के बाद जो सभा बुलाई गई थी उसमें दक्षिण से लौटे भिक्षुओं ने भाग नहीं लिया। इससे विरोध और गहरा हो गया। 14. धार्मिक साहित्य के ह्रास ने भी इसके पतन में सहयोग दिया। मठधरों ने धर्म के 12 अंग बनाए थे। इसके 12वें अंग के 14 पूर्ण भाग केवल भद्रबाहु को ही याद था। उनसे संकलित करने के लिए जब भिक्षु नेपाल गए तो उन्होंने केवल 10 पूर्व ही बताया और उसी के पालन की अनुमति दिया। दक्षिण भारत से लौटे जैन भिक्षुओं के अपने को धर्मगुरु कहा और यह उद्घोषित किया कि वास्तविक आगम सदा के लिए समाप्त हो गया है। 15. जैन धर्म का केंद्र केवल पश्चिम भारत में सीमित रहने से यह शेष भाग से कटने लगा था। अशोक के दूसरे पौत्र समुति जो इसका आश्रयदाता था उज्जैन का शासक था। इससे इनका एक केंद्र उज्जैन बना तथा दूसरे केंद्र मथुरा बना क्योंकि वहां से प्राप्त लेखों में इस धर्म का या इसके फलने फूलने का ज्ञान मिलता है। महागढ़ छोटी छोटी शाखाओं कुल गढ़ आदि में बटा था जिससे इसकी एकता को क्षति पहुंची। 16. प्रचलित भाषा जब पाली नहीं थी पर जैन ग्रंथों की भाषा प्राकृत थी, इससे भी इसकी व्यापकता को धक्का लगा। 6. भारतीय संस्कृति में जैन धर्म का योगदान। भारत के प्राचीनतम धर्मों में जैन धर्म का महत्वपूर्ण स्थान है। जैन पुराणों में वर्णित भारत की स्थिति की विवेचना से ज्ञात होता है कि आदिकाल से ही जैन धर्म भारतीय संस्कृति को सुसंस्कृत, सुपल्लवित एवं सुपुष्पित करता रहा है। जैन पुराणों में भारत का इतिहास उस समय से आरंभ होता है जब आधुनिक नागरिक सभ्यता का विकास नहीं हुआ था। उस समय भूमि घास और सघन वृक्षों से भरी हुई थी। भिन्न भिन्न प्रकार के हिंसक एवं अहिंसक वन्य पशु स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करते थे। मनुष्य ग्राम व नगरों में नहीं बसते थे और कौटुंबिक व्यवस्था का भी विकास नहीं हो पाया था। खान पान वस्त्र आदि की आवश्यकताएं वृक्षों से ही पूरी कर ली जाती थी। यह कल्प वृक्ष का काल था। भाई बहन भी पति पत्नी रूप में रहने लगे थे। इस समय धर्म साधना पुण्य पाप की भावना आदि का कोई विचार या विवेक नहीं था। इस काल को पुराणकारों ने योग भूमि व्यवस्था कहा है। इस तरह की संस्कृति में सुधार लाने का प्रथम श्रेय जैन धर्म के साधकों एवं तीर्थंकरों को है। अतएव भारतीय संस्कृति को जैन धर्म का महत्वपूर्ण निम्न योगदान है। एक, असभ्य असंस्कृत लोगों को सभ्यता का पाठ पढ़ाना। आदि काल के असभ्य और असंस्कृत लोगों को सभ्यता का पाठ पढ़ाने वालों में 14 कुलकारों एवं 63 शलाका पुरुषों का विशेष योगदान है। योग भूमि व्यवस्था से कर्म भूमि व्यवस्था में युग का विकास करने वालों पुरुषों में 14 महापुरुषों का विशेष स्थान है। इन लोगों को कुलकर या मनु कहा गया है। इन्होंने क्रमशः अपने अपने काल में लोगों को हिंस पशुओं से अपनी रक्षा करने के उपाय बताए। भूमि व वृक्षों के वैयक्तिक स्वामित्व की सीमाएं निर्धारित की। पशुपालन, बच्चों के पालन पोषण, प्रकृति के प्रकोपों से रक्षा, निर्माण, कृषि, कर्म, व्यापार, उद्योग आदि का पाठ पढ़ाया। इसके चलते यह भूमि योग भूमि से कर्म भूमि बन गई। इन 14 लोगों के बाद जो लोग हुए उन्होंने धर्मोपदेश, चरित्र, अच्छे बुरे का ज्ञान सिखाया। इन्हें शलाका पुरुष कहा जाता है। इन 63 शलाका पुरुषों में 24 तीर्थंकर भी सम्मिलित थे। अतः सांस्कृतिक उन्नयन में 24 तीर्थंकरों का विशेष महत्व है। इन तीर्थंकरों ने समय समय पर भारतीयों को अपने विचार और ज्ञान के प्रचार द्वारा मोक्ष का मार्ग बताया। जैन धर्म और भारतीय संस्कृति के विकास के साथ जैन धर्म की प्राचीनता भी सिद्ध होती है। वेदों की रचना के काल के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोगों ने उसे 5000 वर्ष व इससे भी अधिक पूर्व का रचित माना है। आधुनिक पाश्चात्य व भारतीय विद्वान इसका रचना काल 1500 ईसा पूर्व के लगभग मानते हैं। सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद की ऋचाओं में वात रसना मुनियों तथा केशी ऋषभ देव का उल्लेख है। अतः इनके उल्लेखों से स्पष्ट होता है कि जैन धर्म 1500 ईसा पूर्व में प्रचलित था। इसलिए भारतीय संस्कृति के विकास में जैन धर्म एक प्रमुख सांस्कृतिक स्रोत रहा है। भारतीय संस्कृति में अवतारवाद पर विश्वास है। ऋषभ देव एक जैन तीर्थंकर थे, किंतु इनकी मान्यता एवं पूज्यता के संबंध में जैन एवं हिंदुओं में मतभेद नहीं है। जैसे वे जैनियों के आदि तीर्थंकर हैं, उसी प्रकार वे हिंदुओं के लिए साक्षात विष्णु के अवतार हैं। उनके ईश्वरावतार होने की बात शिव पुराण में भी वर्णित है। 2. व्यापक सांस्कृतिक दृष्टिकोण। जैन धर्म ने भारतीय संस्कृति को व्यापक दृष्टिकोण अपनाने का योगदान दिया। यह तो भारतीय संस्कृति का दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक और वसुधैव कुटुंबकम का है, पर जैन धर्म का भी दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक है। इसकी दृष्टि ने उदारता की सीमा को स्पर्श कर दिया है। जैन धर्म अपनी विचार व जीवन संबंधी व्यवस्थाओं के विकास में कभी किसी संकुचित दृष्टिकोण का शिकार नहीं बना। उसकी भूमिका राष्ट्रीय दृष्टि से सदैव उदार और उदात्त रही है। इसका यदि कभी कहीं अन्य धर्मों से संघर्ष हुआ है तो केवल इसी उदार नीति की रक्षा के लिए होना प्रतीत होता है। जैनियों ने अपने देश के मात्र किसी एक भाग को भी अपनी भक्ति का विषय नहीं बनने दिया। यदि जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर विदेह उत्तम विहार में पैदा हुए थे तो उन्होंने अपने उपदेश एवं निर्वाण का क्षेत्र बनाया। भारत के पश्चिमी प्रदेश काठियावाड़ को सबसे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ का जन्म हुआ। अयोध्या में तपस्या करने गए कैलाश पर्वत पर। इस प्रकार जैनियों की पवित्र भूमि का विस्तार उत्तर में हिमालय, पूर्व में मगध और पश्चिम में काठियावाड़ तक था। इस क्षेत्र के प्रत्येक भाग को जैन आचार्यों ने अपनी श्रद्धा और भक्ति का आधार बनाया। जैनी न तो प्रचार के लिए और न तपस्या के लिए देश के बाहर कभी गए। दुर्भिक्ष के दिनों में भी वे इस के बाहर न जाकर उत्तर से दक्षिण भारत में रहे। तमिल के सुदूरवर्ती प्रदेश में भी उनके अनेक बड़े बड़े आचार्य हुए जिन्होंने ग्रंथों की रचना की। दक्षिण भारत के अनेक स्थानों पर उनके जैन मंदिरों में ध्वंसावशेष आज भी इसकी पुष्टि कर रहे हैं। 3. लोक भावनाओं के विकास में योगदान। जैन धर्म में लोक भावनाओं को उपेक्षित नहीं किया गया। जैनियों ने लोक भावनाओं के संबंध में भी अपनी वही उदार नीति रखी, जिनकी उनकी यह नीति भाषा के प्रश्न से भी स्पष्ट हो जाएगी। वैदिक परंपरा में संस्कृत भाषा का बड़ा आदर रहा है और इसे देव भाषा मानकर सदैव उसी में साहित्य की रचना की गई है, किंतु भिन्न प्रदेशीय लोक भाषाओं का उसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया। बुद्ध ने लोक भाषा को अपनाया अवश्य, किंतु वे भी पाली भाषा के मोह में पड़ गए। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर ने लोकोपकार की भावना से उस समय की सुबोधवाणी अर्धमाग्धी का उपयोग किया। उनके गणधरों ने भी इसी भाषा में उपदेश का संकलन किया। जैन आचार्य जहाँ जहाँ उपदेश देने गए वहाँ की लोक भाषा में उपदेश दिया। इसकी पुष्टि जैन साहित्य के द्वारा शौरसेनी महाराष्ट्रीय अपभ्रंश प्राकृत भाषाओं के पूर्ण प्रतिनिधित्व से भी होती है। हिंदी गुजराती आदि आधुनिक भाषाओं का प्राचीन साहित्य जैनियों का ही मिलता है। दक्षिण भारत की तमिल कन्नड़ भाषाओं को भी साहित्य में उतारने का श्रेय जैनियों को ही है। जैन धर्म में कभी भी एक प्रांतीय भाषा का पक्षपात नहीं किया गया। धार्मिक लोक मान्यताओं की भी जैन धर्म में उपेक्षा नहीं की गई, किंतु उनका आदर करते हुए उन्हें विधिवत अपनी परंपरा में यथास्थान सम्मिलित कर लिया गया है। राम लक्ष्मण कृष्ण तथा बलदेव के प्रति जनता का सदा पूज्य भाव रहा है, वह उन्हें अवतारी पुरुष माना गया है। जैन तीर्थंकरों के साथ साथ उन्हें भी 63 शलाका पुरुषों में सम्मानित स्थान देकर जैन पुराणों में उनके जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। 4. कलाकृतियों के क्षेत्र में योगदान। कला के क्षेत्र में भी जैन धर्म का योगदान महत्वपूर्ण है। जैन कलाकृतियों का ध्येय जीवन का उत्कर्ष रहा है। जैन कलाकार कभी भी प्रकृति के यथार्थ चित्रण मात्र से संतुष्ट नहीं हुआ। उसका सदैव यह प्रयत्न रहा कि उसकी कलाकृति के द्वारा मनुष्य की भावना का परिष्कार तथा उत्कर्षण हो। उसकी कृति में कुछ न कुछ व कहीं न कहीं धर्म एवं नीति का उपदेश छुपा या प्रकट रहता ही है। प्राचीनतम जैन आगमों में बालकों को उनके शिक्षण कला में शिल्पों और कलाओं की शिक्षा पर जोर दिया गया है और उन्हें सिखाने वाले कलाचार्यों का अलग अलग उल्लेख मिलता है। भारत के अनेक स्थानों पर मंदिरों में सुरक्षित मूर्तियां आज भी जैन कलाकृति के गौरवशाली उदाहरण हैं। दक्षिण भारत के कर्नाटक प्रांत के श्रावण बेलगोला तथा कारकल के से प्राप्त बाहुबली की विशाल कलापूर्ण मूर्तियां आज भी देश की सांस्कृतिक धरोहर के रूप में सुरक्षित हैं तथा इस देश के गौरव को बढ़ा रही हैं। इसके अतिरिक्त गुफाओं, स्तूपों, मंदिरों, मूर्तियों तथा चित्रों आदि ललित कला के प्रकारों द्वारा भी जैन धर्म ने केवल लोक का आध्यात्मिक और नैतिक स्तर उठाने का ही प्रयत्न नहीं किया, वरन समस्त देश के भिन्न भिन्न भागों को कला से सजाया है। इनके दर्शन से हृदय विशुद्ध एवं आनंद विभोर हो जाता है। भारतीय संस्कृति की निधि एलोरा की गुफाओं में जैन गुफाएं अत्यंत सुंदर हैं। इनमें छोटा कैलाश, इंद्र सभा, जगन्नाथ सभा देखने योग्य है। इनमें गोमतेश्वर की सुंदर एवं भव्य मूर्तियां बनी हैं। ये मूर्तियां उनकी ध्यानावस्थित मुद्रा की प्रतीक हैं, क्योंकि उनके पैरों में लताएं लिपटी हुई दिखाई गई हैं। ये इतने ध्यानमग्न हो गए हैं कि उन्हें अपने पैरों में लताओं के लिपटने का तनिक भी ध्यान न रहा। इसी प्रकार स्तूप वाला आयागपट मथुरा का जीन मूर्ति युक्त आयागपट, दुमंजिली शनि गुम्फा उदयपुर के रानी गुम्फा के तोरण द्वार पर त्रिरथ एवं अशोक वृक्ष, रानी गुम्फा का भित्ति चित्र, इसका विन्यास व स्तंभ, खजुराहो के पार्श्वनाथ मंदिर के भित्ति चित्र, सोनागिरी के जैन मंदिर, आबू का जैन मंदिर, लोहानीपुर की मस्तक विहीन जिन मूर्ति, सिंधु घाटी की नंगी जिन मूर्ति, ऋषभ की खंगासन में धातु प्रतिमा, तेरापुर गुफा में पद्मासन में पार्श्वनाथ, देवगढ़ की पद्मासन में जिन मूर्ति प्रतिमा, पार्श्वनाथ की पद्मासन मूर्ति, बाहुबली की प्रतिमाएं, भारतीय संस्कृति के अक्षय सौंदर्य कोष हैं। 5. अहिंसात्मक भावनाओं की वृद्धि में योगदान। भोग भूमि व्यवस्था के बाद कर्म भूमि व्यवस्था में जैन साधकों ने अहिंसात्मक भावनाओं का बीजारोपण किया। जीव जगत में एक मर्यादा तक अहिंसा की प्रवृत्ति स्वाभाविक है। भारतीय सामाजिक जीवन में श्रमण परंपरा एवं वैदिक परंपरा में अहिंसा की नीति को लेकर सदैव विरोध रहा। धार्मिक विरोधियों विधियों में नरबलि की प्रथा पहले मंद पड़ गई थी, किंतु पशु बलि यज्ञ क्रियाओं का एक सामान्य अंग बना रहा। इसका श्रमण साधु सदैव विरोध करते रहे। आगे चलकर श्रमणों के दो विभाग जैन एवं बौद्ध हुए। उन दोनों ने अहिंसा के सिद्धांत पर जोर दिया। जैन धर्म अहिंसा की भावना का प्रथम उद्घोषक है। इस धर्म ने अहिंसा के अधिकाधिक जोर दिया। संसार में अनंत प्राणी हैं और सब में जीव विद्यमान है। सब में परमात्मा को प्राप्त करने की योग्यता है, अतएव वे इनकी हिंसा पर निरोध लगाते हैं। यही कारण है कि जैन धर्म परम अहिंसावादी है। पृथ्वी काय, जल काय, वायु काय, अग्नि काय, वनस्पति काय और त्रास जीव, चलने फिरने वाले, इन 6 प्रकार के जीवन के प्रति संयमपूर्ण व्यवहार ही जैन धर्म में अहिंसा कहा गया है। जैन धर्म ने अहिंसा के इस उपदेश से भारतीय संस्कृति में पशुओं के द्वारा होने वाले योगदान को प्रोत्साहित किया। हिंसात्मक भावनाओं को प्रेरणा न मिली तथा मानव मात्र में प्रेम का भाव बढ़ गया। 6. भारतीय दर्शनों का तत्व चिंतन में योगदान। वेदांत दर्शन में केवल एक चिदात्मक तत्व ही स्वीकार किया गया है, जिसे ब्रह्म कहा गया है, और शेष दृश्यमान जगत के पदार्थों को असत व माया जाल रूप बतलाया गया है। एक अन्य दर्शन में केवल भौतिक तत्वों की सत्ता ही स्वीकार की गई है और उन्हीं के मेल जोल से चैतन्य गुण की उत्पत्ति मानी गई है। इस मत को चार्वाक दर्शन कहा गया है। जैन दर्शन जीव और अजीव रूप में से दोनों तत्वों को स्वीकार करता है। उसमें मौलिक तत्व एक नहीं किंतु 6 द्रव्यों को माना गया है। द्रव्य वह है जिसमें सत्ता गुण हो। सत्ता स्वयं त्रिगुणात्मक है। इनके 3 गुण हैं, उत्पाद, व्यय और ग्रव्य। तात्पर्य यह कि न तो वेदांत में द्रव्यों की पूरी सत्ता का निरूपण किया जाता है और न चार्वाक दर्शन में। द्रव्यों में वेदांत सम्मत कूटस्थ नित्यता भी सिद्ध नहीं होती और न बौद्ध सिद्धांत की क्षण ध्वंसता मात्र। संसार में चैतन्य गुणयुक्त आत्मतत्व भी है और चैतन्यहीन मूर्तिमान भौतिक पदार्थ तथा अमूर्तिक काल आकाश आदि तत्व भी। ये सभी द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। अपनी गुणात्मक अवस्था के कारण उनमें उत्पत्ति विनाश रूप अवस्थाएं भी विद्यमान है। जैन धर्म के इस दार्शनिक तत्व ज्ञान में ही इसकी व्यापक दृष्टि पाई जाती है। इसी व्यापक दृष्टि से वस्तु विचार के लिए उसने अपना शादवाद व अनेकांत रूप न्याय स्थापित किया है। इस प्रकार जैन धर्म ने एक तत्व चिंतन की शैली भारतीय दर्शन को दी। जैन धर्म की इन योग्यताओं से हमारी संस्कृति समृद्ध हुई, जिसके अध्ययन के बिना भारतीय संस्कृति का अध्ययन अपूर्ण रह जाता है।